आओ बच्चों आओ, आज दादी आपको एक साखी सुनाएगी जिसमें गोरख मते का नाम बदलकर नानक मते क्यों रखा गया। बच्चों आपको मजा आता है, एंजॉय करते हो? ठीक है। एक बार नानक जी गोरख मते नाम की एक जगह पर पहुंचे। वहाँ दूर दूर छोटे छोटे गांव थे। ये कृषि आधारित क्षेत्र था तो यहाँ योगियों की जरूरतें आराम से पूरी हो जाती थीं। यदि कोई किसान भिक्षा में अनाज मठ में ना भेजता तो योगी तपस्या के बल पर श्राप देने की धमकी भी देते थे। अतः लोग श्राप के डर से अपने आप खाद्य सामग्री मठ पर पहुंचाते रहते थे। जब नानक जी वहां पहुंचे तो पीपल के एक सूखे पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन जमाया और भाई मर्दाना को कीर्तन करने का आदेश दिया। लोगों ने जब सरल भाषा में मधुर संगीत में प्रभु की स्तुति सुनी तो बड़े प्रभावित हुए। धीरे धीरे वहां लोग गुरुदेव के पास वाणी श्रवण करने के लिए एकत्र होने लगे। उस समय गुरुदेव जी ने जन समूह को उपदेश दिया कि व्यक्ति को गृहस्थ में रहकर अपने सभी कर्तव्य निभाते हुए प्रभु भजन भी करते रहना चाहिए। वास्तव में यही संन्यास है। घर त्याग कर कोई विशेष वेशभूषा धारण करके कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। महान वही है जो अपनी जीविका स्वयं कमाए तथा परमार्थ के लिए दीन दुखियों की सहायता करता रहे। जो व्यक्ति ऐसा न करके दूसरों के घर से जीवन निर्वाह करता है तथा त्यागी होने का ढोंग रचता है वह प्रभु प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तविक त्याग तो मन का त्याग है, शरीर का नहीं। शरीर के बिना कारण कष्ट देने से आत्मा शुद्ध नहीं होती तथा ये कार्य स्वयं को धोखा देना है। यानी आप क्या कर रहे हो, हट योग कर रहे हो, अपने शरीर को तंग कर रहे हो, तो भगवान ऐसी चीज़ों से खुश थोड़ी होते हैं। जब ये विचार जन साधारण ने सुने तो उनको जो योगी उधर थे ना पहले से ही, वो उनको ढोंगी और कपटी नज़र आने लगे जो कि उन्हीं के माल पर ऐश कर रहे थे एवं बिना परिश्रम के अपने आप को महान दिखाते थे। लोगों को वरदान और श्राप से भयभीत कर उनसे लूटते थे। कुछ व्यक्तियों ने योगियों की उनके यहाँ जाकर आलोचना भी कर दी। वे लोग स्वयं ही कहते थे कि ये लोग खुद ही पथ भ्रष्ट है तो दूसरों का क्या कल्याण करेंगे। ये सब जानकर योगी बहुत क्रोधित हुए कि ऐसा कौन आ गया है जो उनके विचारों का खंडन कर रहा है तथा जनता को विपरीत शिक्षा दे रहा है। वो डर गए ना, सोचते थे अगर वो ऐसा करने में सफल हो गया तो उनकी जीविका का क्या होगा, उन्हें कौन पूछेगा। तभी वहाँ एक योगी आया, उसने नानक जी के बारे में उनको बताया कि वह अपने शिष्य मर्दाना के साथ संगीत में प्रभु स्तुति करते हैं और उनकी स्तुति में ऐसा रस है कि रीठे जैसा कड़वा फल भी मीठा हो जाता है। वह गृहस्थ आश्रम की महानता देते हैं तथा इसी आश्रम की तीन सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मनुष्य को का कल्याण बताते हैं। कीरत करो यानी परिश्रम करो, वंड छको यानी मिलकर खाओ, नाम जपो यानी प्रभु का चिंतन करो। तो योगी कहने लगे ऐसी बात है तो हम इसी समय उनकी परीक्षा लेंगे कि वे कैसे वंड कर छकते हैं। अंत में लोग नानक जी के पास गए तो वह देखकर हैरान हो गए कि जो पीपल का पेड़ वर्षों से सूखा था हरा भरा हो गया। वहाँ के गांव की स्त्रियाँ नानक जी के लिए कुछ भेंट स्वरूप रसद लाई थी, जैसे घी, अनाज, शक्कर। तो मर्दाना ने जी ने क्या किया कि गांव वाले की मदद से उन सारी सामग्री का हलवा बना दिया गुरु जी ने योगियों को गृहस्थी का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ त्याग कर अगर सब सन्यासी बन जाएं तो संसार की उत्पत्ति कैसे होगी। यदि तुम्हें स्त्री जाति से इतनी घृणा है तो माता और बहनों का बने हुए हाथ का खाना क्यों खाते हो, गृहस्थियों के घर जाके भिक्षा क्यों मांगते हो। इन सब प्रश्नों का उत्तर तो योगियों के पास था ही नहीं, तो वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले। गुरुदेव जी ने उनसे पूछा, अच्छा बताओ श्रेष्ठ कौन है। इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। तब गुरु जी ने ही उत्तर दिया कि श्रेष्ठ वही है जो प्रभु कृपा का पात्र बनने के लिए किसी प्रकार का ढोंग नहीं रचता। वास्तविक योग तो मन का ही है। आप लोगों ने जो वेश धारण कर रखा है ये किसी प्रकार से प्रभु की प्राप्ति में सहायक नहीं है। शारीरिक दिखावे से प्रभु को भ्रम में नहीं डाल सकते आप। वास्तविक योगी वही व्यक्ति है जो भले ग्रस्त आश्रम में जीवन निर्वाह करता हो परंतु माया से निर्लेप हो। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी के स्पर्श से मुक्त है। गुरुजी ने बताया कि भले आप शमशान में आसन जमाएं, तीर्थ जाकर हट साधना कर लें या नशे का सेवन कर लें, पर जब तक राम का नाम या राम के नाम की कमाई हृदय से नहीं होगी तो बात बनेगी नहीं। ये सब सुनकर योगियों ने को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। तो उनकी जो बातें थी वो जनता के सामने फीके पड़ गए ना, क्योंकि अब लोग तो नानक जी की बात सुनते थे, योगियों की तो कोई सुन ही नहीं रहा था। उस समय एक योगी ने गुरुदेव जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव आप हम सब पर कृपा करके एवं कोई ऐसी युक्ति बताएं कि जिससे हमारा भी कल्याण हो। योगियों की प्रार्थना से गुरुदेव प्रसन्न हुए और बोले, किसी पूर्ण पुरुष के मिलने से मन की शंकाओं का समाधान होता है, यानी आपको कोई गाइडेंस तो देने वाला चाहिए ही। उनके उपदेशों से मन की भटकना समाप्त हो जाती है, जिससे अंतकरण में अमृत नाम उत्पन्न होता है। फिर किसी बाहरी नशे की जरूरत नहीं पड़ती, व्यक्ति की समाधि सहज ही लग जाती है और मन एकाग्र भी हो जाता है। योगियों ने गुरुदेव जी की बताई हुई युक्ति को समझा और उसका मनन भी किया। पर पता क्या था, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, अब उन सबको भूख लग रही थी। तो योगियों ने भोजन की इच्छा व्यक्त की, परंतु बनी मन सोच रहे थे कि नानक जी कैसे मराते थे सत्कार कर सकते हैं, वहाँ तो कोई कंदमूल भी नहीं है। अब जो हलवा या कड़ा प्रसाद मर्दाना जी ने बनाया था ना, गुरुदेव जी ने वही प्रसाद रूप में सबको बंटवाया और सेवा की। तो कड़ा प्रसाद चखते ही सारे गदगद हो गए, बड़े खुश हुए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतना स्वादिष्ट व्यंजन तो चखा ही नहीं था। जब प्रसाद चख कर संतुष्ट हो गए तब सब योगियों ने मिलकर फैसला किया कि उन्हें नानक जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए इस स्थान का नाम गोरख मते से बदलकर नानक मते रख दिया जाए। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। अच्छा लगा बच्चों, खुश रहो, सदा खुश रहो।